एक पागल खाने में वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको लगा कि बहुत समय से सबका इलाज चालू है और नए मरीजों को भर्ती करना है, कुछ जो ठीक हो गए हैं उनको छुट्टी देनी चाहिए, परंतु ये कैसे पता करें कि कौन कौन ठीक हो गया है। तो वो एक परीक्षा लेते और सबको बुलाते हैं स्विमिंग टैंक के पास। वो जो स्विमिंग पूल है वो खाली है, तो एक एक पेशेंट को ऊपर खड़ा करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें नीचे जो स्विमिंग पूल है उसमें तैरना है। स्विमिंग पूल खाली है, पहला जो है वो कूद जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। दूसरे को भी वही कहता है, हर एक कूदता है, कोई भाग भाग के सीढ़ियों से नीचे जाता है, पर जाता जरूर है। एक ही होता है, वो कहता है मैं नहीं कूदूंगा, वो कहता है मैं नहीं कूदूंगा। इंचार्ज को लगता है कम से कम एक तो ठीक हुआ, इतने सारे पागलों में से एक है बुद्धिमान जो ठीक हो गया, इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिर भी उत्सुकता बस उसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं कूदना चाहते। तो वो कहता है आई कांट स्विम, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। ये कैसे पता करें कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं? ये कैसे पता करें कि हम अपनी बीमारियों से छूट गए हैं या नहीं? परीक्षा तो होनी चाहिए। जब तक पेपर नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा क्या तैयारी की है। तो आज चर्चा का 9वां दिन, आहार की चर्चा का। जो बगीचे का मालिक था वो खेती का गुलाम बन गया, और क्या क्या हो गया। आज मुक्त परीक्षा। आज बाबा ने कहा है पास विथ ऑनर, पेपर में तुमको पास होना है, तैयार होना है। अंत में आने वाले तुमने तैयारी नहीं की, इसलिए तुम्हारे प्रांत में आतंकवादी तैयार हो गए। पंजाब से मुलाकात। आतंकवादी क्यों आ गए? क्योंकि तुम अंत में जो आने वाले हो वो तैयारी नहीं हुए, इसलिए वो तैयार हो गए। ये कारण है राइज ऑफ टेररिज्म का। तो बीमारियां तो बहुत है संसार में, बट हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो बीमार रहता है वो किसके कारण? पेट के कारण। पेट की समस्याएं सबसे ज्यादा है। इन 9 दिनों की चर्चा में हमने एक बात तो पकड़ी है कि कहीं ना कहीं हमारा आहार ही हमारी सभी बीमारियों का कारण है। जो कुछ शरीर में हो रहा है उसका सीधा संबंध आहार से है। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मुख्य जो है वो हम शरीर में क्या उड़ेल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। जो कुछ भी डाला जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है शरीर में। मेडिकल में 2-3 शब्द है, फार्मेको काइनेटिक, फार्मेको डायनामिक्स, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। हम 2 चीजें शरीर में डालते हैं, एक तो भोजन डालते हैं, दूसरा दवाइयां डालते हैं। या तो दवाइयां या तो भोजन। कोई कोई भाग्यशाली है जो दवाइयों से मुक्त है, पर वो दवाई छोड़ के फिर दूसरा कुछ कुछ डालते हैं, जड़ी बूटियां या और कुछ यहां वहां की बातें, नुस्खे जो सुने हैं उन्होंने। जो कुछ भी शरीर में डाला जाता है वो शरीर के साथ कुछ करता है। जो कुछ शरीर में डाला जाता है शरीर उसके साथ कुछ करता है। फार्मेको काइनेटिक्स, फार्मेको डायनामिक्स। जो कुछ शरीर में डाला जा रहा है, अगर 2 चीज डाली जा रही है वो 2 चीज आपस में कुछ करती है। कोई लोगों की आदत होती है सब कुछ ट्राई करते हैं, होम्योपैथी भी लेते हैं, आयुर्वेद भी लेते हैं, एलोपैथी भी लेते हैं, भोजन में भी कुछ कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। पर ये 3 चीजें होती रहती है। जो हम शरीर में डालते हैं वो शरीर के साथ कुछ करता है, शरीर उसके साथ कुछ करता है, और 2 चीजें जो शरीर में है वो आपस में कुछ करती है। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, फार्मेको काइनेटिक्स, फार्मेको डायनामिक्स। इतना आसान नहीं है कि ऊपर से डाल दिया और हम एकदम शांत योग में बैठ गए, मैं आत्मा हूं, ज्वालामुखी योगी हूं। क्योंकि जो डाला वो यदि गलत कॉम्बिनेशन है तो अंदर लड़ाई चालू हो जाएगी, महाभारत की। हमारा पेट ही कुरुक्षेत्र है जहां पे हम इतनी सारी चीजें डालते रहते हैं और उनकी आपस में लड़ाई चालू रहती है। और एक समय आता है कि चाहे कोई भी जीते, दुख तो बीमार तो शरीर ही होगा। इसलिए एक बात 8 दिनों की चर्चा में हमने जानी कि आहार ही बीमारियों को जन्म देता है, अधिक आहार ही बीमारियों का कारण है, गलत आहार ही बीमारियों का कारण है, और बीमार शरीर रुग्ण शरीर रुग्ण मन को निर्माण करता है। आज की मुरली में है शरीर के बारे में बात की है बाबा ने, शरीर का भाग्य। शरीर का भाग्य क्या है? शरीर स्वस्थ रहे ये सबसे बड़ा भाग्य है, शरीर स्वस्थ रहे ये सबसे बड़ा भाग्य है। पर मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर शरीर बीमार भी है तो भी वो सेवा के निमित्त रहे, वो कर्म भोग का प्रभाव हम पर ना पड़े, ये भाग्य है। और उसमें सबसे मुख्य चीज है वर्णन। क्या करता है व्यक्ति? बीमार पड़ते ही अपनी बीमारी का वर्णन करने लगता है। जितनी बीमारी होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही वर्णन करता है। ये वर्णन करना कर्म भोग का, ये भी एक बंधन है। ये क्या बना देता है हमको? बाबा ने इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया, हेल्थ कॉन्शियस। फिर वो क्या कर देता है हमको? नर्वस। हेल्थ कॉन्शियसनेस, क्या ये अच्छी बात है? एक रीति से हाँ, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, पर टू मच हेल्थ कॉन्शियस। दिन रात शरीर का ही सोचते रहना, दिन रात शरीर की ही बीमारी के बारे में सोचते रहना, जो भी मिले उसे अपनी बीमारी का ही वर्णन करना कि मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, मुझे ऐसा होता है, दो दो बार एंजियोग्राफी हो गई है, फिर भी अभी तक कहते हैं यहां दर्द तो है ही, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है, बस बीमारी तो है ही। उनकी ऐसी बीमारी है कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। तो सभी बीमारियों में बहुत अधिक जो एक बीमारी है वो क्या है? पेट की। और पेट की सभी बीमारियों में एक बीमारी है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। बीमारियां बहुत है, पर हम इस चर्चा में केवल ये इस एक ही बीमारी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ सीरीज नहीं है जिसमें हम बीमारियों की चर्चा करें, हमारी आध्यात्मिक सीरीज है। तो कब्ज की वजह से क्या क्या होता है पहले आप बताएंगे, फिर चर्चा चालू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहा तो क्या क्या होता है? भारीपन और भारी पेट। योग कर सकता है क्या? एक तो योग में फर्क पड़ेगा, दूसरा सुस्ती, आलस, पेट में कड़क, भारीपन, गैस, एसिडिटी और नींद और वॉमिटिंग, सरदर्द, गैस सिर पे चढ़ गया क्या कहते हैं पेशेंट, सिर में चढ़ गया, और क्या होगा? उदास, उमंग, उत्साह नहीं, चिड़चिड़ापन। एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है क्या जब पेट ठीक नहीं रहा तो? लेजीनेस, आलस, और अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, मजा नहीं आता है कुछ भी, और हाँ नींद आती है बहुत, खोया खोया रहता है ना, सारा योग पेट के साथ पेट के साथ योग लगा रहता है बाबा साहब ने, पर सारा योग पेट के साथ लगा हुआ है और एक मरीज आया था, वो कहता था मेरे पेट में ना आवाजें आती है। हमने कहा कौन सी आवाजें आती है? तो अलग अलग जानवरों की आवाज आती है। कौन कौन से? कभी बिल्ली की आवाज आती है, कभी कुत्ते की आवाज आती है, कभी गधे की आवाज आती है, अलग अलग समय आवाजें कंटिन्यूस आती रहती है म्यूजिक ये जो होता है ना कॉलर ट्यून बजते ही रहता है अलग अलग तो जितनी भी पेट की बीमारियां है वो सभी का कारण कहीं ना कहीं हमारा भोजन है। और जितना भोजन पक्व होगा, कुक्ड होगा, प्रोसेस्ड होगा, मशीन से गुजारा हुआ होगा, उतनी पेट की बीमारियां अधिक। जितना भोजन प्राकृतिक होगा, नैसर्गिक होगा, कुदरती होगा, नेचुरल होगा, उसी रूप में होगा जिस रूप में प्रकृति ने हमें दिया है और वो उसी तरह से लिया जा रहा है जिस तरह प्रकृति चाहती है, प्रकृति अनुरूप, तो पेट स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा। कहते हैं हमारे तीन केंद्र है चेतना के। सबसे पहला है मस्तिष्क जो विचार का केंद्र है, दूसरा है हृदय जो भाव का केंद्र है, और तीसरा है नाभि जो संकल्प का केंद्र है। नाभि को कई लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण माना है इस शरीर में, नाभि केंद्र, क्योंकि हमारा नाभि केंद्र जो है वो विल पावर का केंद्र है, ऐसा कहा जाता है। मस्तिष्क से हम विचार करते हैं, विचार चलते हैं, हृदय में भाव उठते हैं, जो पिछले संडे की मुरली थी, हेड एंड हार्ट, हृदय और दिल और दिमाग, ये दो चीजें। एक तीसरा भी केंद्र है, वो है नाभि केंद्र जिसको कहते हैं। वो किससे सक्रिय होता है, वो कैसे खुलता है? संकल्प का केंद्र है वो, विल पावर का, इच्छा शक्ति का, दृढ़ता का केंद्र है। उसके खुलने के भी दो मार्ग है। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो खुलता है, दूसरा अभय की साधना से वो खुलता है। अभय की साधना की हमने उस दिन चर्चा की थी। हमारे मन में या हमारे जीवन में ऐसे कई सारे केंद्र हैं मस्तिष्क में जो भय है, जहां पर अगर उनको यदि खोलना है तो वो सारी चीजें करना है जिससे भय लगता है, भय का सामना करना। अभय अर्थात भय का अभाव नहीं, संपूर्ण भय के साथ साहस का प्रदर्शन करना, ये अभय है। जो हमेशा हमको डराता है वही चीज करनी। जिस दिन भय से मुक्ति होगी संकल्प का केंद्र जागृत होता है। हमेशा भय रहता है, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, ये बीमारी, कुछ नहीं होगा, जाओ के देखो। हमेशा भय रहता है ट्रैवल का, यहां से नीचे जाएंगे उल्टी होगी, कुछ नहीं होगा, जाओ करके देखो, कुछ भी नहीं होगा। हमने कभी उपवास किया नहीं, हमने कभी फास्टिंग किया नहीं, फास्टिंग का डर लगता है, करके देखो। वो सफल हो गया तो जो भय का एक केंद्र है वो खुल जाएगा, उससे मुक्ति होगी। तब ये नाभि केंद्र खुलेगा। नाभि केंद्र ये दो ही चीजों से खुलता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे के सेशन में कभी लेंगे कि कौन से श्वास की प्रक्रिया से ये नाभि का केंद्र खुलेगा। डांटेन, क्या कहते हैं डांटेन, अलग अलग नाम है उसको, टुम्मो ब्रीदिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो केंद्र है ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जब जब हम अपने जीवन के एक एक भय को जीतते जाते हम आगे बढ़ जाते हैं। और उस दिन भी कहा था सन्यासी अर्थात वो संसार क्यों छोड़ता है, इसलिए नहीं कि उसको एकांत चाहिए, वो अभय का प्रदर्शन है उसके। कल की कोई परवाह ही नहीं, न पत्नी न बच्चे न कोई न कोई, जो होगा देखेंगे, न पैसे है न कुछ है, न कुछ है, बस निकल पड़ो अकेले। किस लिए? अभय की साधना है वो। तो पेट की तरफ थे हम। तो जब पेट कमजोर, कॉन्स्टिपेटेड पर्सन, धीरे धीरे उसका माइंड भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, धीरे धीरे मन भी इमोशनली भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है वो, इमोशनल कॉन्स्टिपेशन। तो ये बीमारी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है कॉन्स्टिपेशन की, सदियों से चालू है। मार्टिन लूथर था, जिसमें क्रिश्चियनिटी के दो भाग है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का प्रचारक या जिसने सूत्रपात किया वो था मार्टिन लूथर। उसके लिए कहा जाता है वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता था। सारी उसने जो कुछ रिफॉर्मेशन की सूत्र बनाए वो उसके वो टॉयलेट रूम में बैठकर ही बनाए हैं। अर्थात ये जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी निकली वो उसकी पूरी उस टॉयलेट का अध्ययन किया गया, कैसा था, कितना ये था, 400-500 वर्ष पुराना टॉयलेट, उस पर भी स्टडीज है। मार्टिन लूथर का ये टॉयलेट है, यहाँ बैठ के उसने सारी रचनाएं की कि क्या क्या दोष है और क्या क्या नई नई चीज़ें करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन ने व्यक्ति को कभी छोड़ा ही नहीं है, और हमने कॉन्स्टिपेशन को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा है। कॉन्स्टिपेशन के कुछ पहलू हम अब देखेंगे। सबसे पहले तो मेडिकल पहलू, कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। पहले कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा जो मेडिकल साइंस कहती है, वो आपके हिसाब से क्या है कॉन्स्टिपेशन, किसको कहेंगे? बहुत सारी परिभाषा है, पर कब्ज, हफ्ते में 3 बार से कम, इसको कॉन्स्टिपेशन कहा है मेडिकल साइंस। हफ्ते में लेस देन 3 टाइम्स, इसको कॉन्स्टिपेशन कहा है। और कॉन्स्टिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबा समय कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कब्ज जिनको रहता है, उनको क्या होता है, फिशर, हिमरॉइड्स, पाइल्स, फिकल इन्फेक्शन, ये 3 मुख्य चीज है। जो मल है वो कड़क पत्थर जैसा हो जाता है और फंस जाता है, फिर कोई दवाई काम नहीं करती है, मैनुअल रिमूवल करना पड़ता है उंगली से, तो भी नहीं काम करता है कई बार। ये 3 मुख्य चीज़ें, एक तो फिशर, क्योंकि जो एरिया है एनल रीजन, वहाँ पे व्यक्ति कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेटेड है, स्ट्रेन करता है, दबाव लगाता है, तो तो वो एरिया फटने लगती है, वहाँ फिशर होता है, फिर ब्लीडिंग होती है, पाइल्स होता है, खून कम हो जाता है, फिर खून चढ़ाओ, फिर सब कुछ चालू होता है, एक 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 बीमारी बढ़ती जाती है। फिशर्स एंड पाइल्स, ये दो मेन चीज़ें, और फीकल इम्पैक्शन, फीसेस जो है वो कड़क हो जाता है, हार्ड, और फिर व्यक्ति हर चीज़ करता है अपने आप से इससे मुक्त होने के लिए। डॉक्टर के पास तो बहुत बाद में जाता है, बाकी बीमारियों के लिए तुरंत जाता है, ये ऐसी एक बीमारी है कि तुरंत कभी नहीं जाएगा, जो उससे हो सके सब करता है, उंगली से निकालना, गणेश क्रिया कहते हैं उसको ये नेचुरली व्यक्ति करता है, सब कुछ करता है। तो परिभाषा क्या बताई इसकी, कि हफ्ते में 3 बार क्या क्या होता है इसमें, या तो दर्द होता है, या तो फूलता है पेट, और इसके कारण डेफिनेशन तो ये बता दी, कई सारे दूसरी प्रकार की डेफिनेशंस भी है, एक तो हार्ट स्टूल, या तो फ्रीक्वेंसी कम, या तो पेट में फूलना, या दर्द होना, ये सब भी उसी की परिभाषा में आता है, या फिर ऐसा लगना जैसे पूरा साफ नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग, साफ तो हुआ है पर अभी 2 घंटे के बाद फिर जाना है, फिर 2 घंटे के बाद फिर जाना है, क्लास से पहले जाना है, फिर क्लास के बाद जाना है, फिर मुरली से पहले जाना है, मुरली के बाद जाना है, फिर भोजन के पहले जाना है, भोजन के बाद फिर जाना है, बॉवेल मूवमेंट्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं, मतलब तृप्ति नहीं है, सब जगह संतुष्ट मनी है एक्सेप्ट पेट के प्रति संतुष्टता है ही नहीं, क्योंकि पेट हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि जो हम उसमें डाल रहे हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है, जो दिख रहा है वो डाले जा रहे हैं। हाँ, जिनको जिनको कुछ कुछ बीमारी है, शुगर है, ये वो थोड़ा सा हिसाब से करते हैं, पर फिर भी कभी कभी चीटिंग डेज, इसको कहते हैं चीटिंग, चीटिंग कर लेते कभी कभी, सब एक दिन तो करना चाहिए, 6 दिन किया अभी एक दिन, आज ये वापस थोड़ी ना बनने वाला है कभी, तो उस दिन चीटिंग कर लेते हैं। कॉजेस, कारण क्या क्या है कब्जी के, वो ढेर सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण डिवाइड किए गए हैं, मेडिकल में जब भी कारणों की चर्चा होती है, इटियोलॉजी जिसको कहते हैं, डिवाइड किए जाते, एक तो कारण है डाइट, उसमें मुख्यतः लो फाइबर डाइट बताते हैं, और जो लोग पानी की मात्रा कम लेते हैं वो बताते हैं, मोटिलिटी, मोबिलिटी, एक्सरसाइज ही नहीं करते, बस खाना पीना सोना, थोड़ा बहुत चलते हैं, एक्सरसाइज है ही नहीं जीवन में, इसके लिए कब्जी बहुत ज़्यादा है, जब भी देखो कब्जी है ही, और वो कब्जी के लिए कुछ ना कुछ चूरन, इसबगोल, कुछ ना कुछ ले रहे, त्रिफला, कुछ ना कुछ कर रहे। फिर दवाइयाँ, कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, कई सारे पेशेंट्स जो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि कुछ बीपी की टैबलेट्स है, कुछ जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको कब्जी रहती है, या ओपियोइड्स, पेन किलर्स होते हैं, उनका तो कब्जी होना ही होना है उनको, जो ओपियोइड पेन किलर लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है दवाइयों की। अगर किसको कब्जी है तो पहले तो ये देख लेना है कि मैं जो दवाइयाँ खा रहा हूँ कहीं कब्जी इनके वजह से तो नहीं। जैसे हमारे एक वरिष्ठ भाई है यज्ञ के, उनके पैरों में हमेशा सूजन रहती थी, उनको बीपी की एक गोली चालू थी, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते थे, बहुत सीनियर डॉक्टर, वो कहते थे वही गोली को चालू रखो, वो जो चल रहा है सेम चलने दो, और सूजन की अलग से देते थे, सूजन कम होती थी फिर आती थी। एक बार वो बड़े डॉक्टर विदेश चले गए, उनका जूनियर डॉक्टर था, तो उन्होंने दिखाया ये दवाइयाँ चालू, उन्होंने कहा ये गोली इसके वजह से, इसको हटाओ, दवाई को जैसे हटा दी सूजन खत्म तो कुछ बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं उसके, मेडिकल में ऐसा कहा जाता है ड्रग विच हैज़ नो साइड इफेक्ट इज़ नॉट अ गुड ड्रग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ड्रग है उसका कोई साइड इफेक्ट ही ना हो। इसके लिए प्योर शरीर की एक परिभाषा ये भी है कि जिसे किसी भी दवाई की आवश्यकता ना पड़े। ये सारी साधना जो है 84 दिनों की, उस अवस्था तक हमको पहुंचना है कि जिसमें हमें अपने शरीर के लिए किसी भी दवाई की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम अपना आहार करें, ऐसी अपनी दिनचर्या कर ले कि दवाइयों से मुक्त हो जाए, क्योंकि सभी दवाइयाँ क्या है इन वन वे, वो साइंटिफिक टॉक्सिन्स है, वो विजातीय तत्व है, पर क्या करें, अब बीमारी ऐसी है और ठीक नहीं हो रही तो वो लेना पड़ रहा है, और जब दवाई लेनी पड़ती है तो साथ में उसका साइड इफेक्ट भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होगा। कोई बहुत ही संकल्पवान, दृढ़ संकल्पवान ही व्यक्ति होते हैं कि जो अपनी सभी दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं, पर वो कभी संकल्प ही नहीं करते ऐसा, वो उसी के साथ जीना सीख लेते हैं और सारा जीवन दवाइयों के साथ निकल जाता है। और अपने साथ ज्ञान की भी पॉइंट्स जोड़ी हुई है, मुरली की जो भी पॉइंट आती है वो उसके साथ जोड़ते हैं, हिसाब किताब है, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये तुमको लेना चाहिए, ये सब, फिर भी सेवा नहीं छोड़नी है, वगैरह 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 करके कार्मिक अकाउंट है। पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, इसलिए बीमारी, इसलिए दवाई लेनी पड़ रही है, इसलिए बीमारी है और इसलिए दवाइयाँ है। एक ऐसा समाज हो, सतयुग में कोई दवाइयाँ होती है क्या? दवाइयों से मुक्त समाज, वैसा समाज बनाने से पहले हमें अपने शरीर को दवाइयों से मुक्त करना है। परंतु वो एक दिन में नहीं होगा, और कोई किसी को सुन के अगर किसी ने छोड़ दिया सब कुछ तो और ही बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि कार्य जो करना है पहले समझ से करना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। जब तक समझ में ना आ जाए चीज़, कोई उपवास नहीं करना, ना ही कोई आहार को फॉलो करना, जो खा रहे वही खाते रहो, केवल सुनते रहो ये सुनते रहो बस, बाकी चल रहा है वही चलने दो, उसको छोड़ना नहीं। ये क्लास सुन लिया, इसमें ऐसा बता दिया, इसलिए ये कर दिया, ये कुछ नहीं करना, सुनते रहो पर चालू वही रखो जो चालू है ये बिना समझ के करना ही नहीं है। जब तक अंतः चेतना कन्विंस नहीं हो जाती कि मुझे अपना आहार बदलना है, तब तक कुछ भी फॉलो नहीं करना, वो भी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली विथ अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो साइड इफेक्ट्स होंगे। तो कब्जी और किस किस की वजह से होती है? दवाइयों की वजह से होती है, पहले तो ये देख लो। फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिनमें कब्जी रहती ही रहती है, ढेर सारी है, अभी तो यहाँ तो सब नहीं गिनाऊंगा, जैसे डायबिटीज इट्सेल्फ, किडनी डिसीज, थायराइड की डिसीजेज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनमें व्यक्ति को कब्जी रहती ही रहती है। कब्जी का एक कारण कंजेनाइटल भी है, बचपन से ही कुछ बीमारियां है। कब्जी का एक कारण साइकोलॉजिकल भी है, माइंड, व्यक्ति दिन रात कॉन्स्टिपेशन के बारे में ही सोचते रहता है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है उसको, आज पेट साफ हुआ कल नहीं हुआ, बस वही चिंतन है, दिन रात पेट का ही चिंतन है, दूसरा ऑब्सेशन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का कि वो, या फिर कभी कभी बचपन से ही ऐसे संस्कार आते हैं कि व्यक्ति को डर लगता है सोशल, एक डर बैठ जाता है बच्चे के मन में, वो क्यों बताए, भय की वजह, पब्लिक रेस्ट रूम सब लोग है, या कभी कभी लेजी होता है, ये कुछ अलग कारण है, जैसे साइकोलॉजिकल एक ब्लॉक। मेडिकल में एक बीमारी ऐसी भी है भाइयों के लिए, जब वॉशरूम जाते हैं अगर बाजू में कोई है, अभी अभी उसको सेंसेशन आया है यूरिन जाना है, पर बाजू में अगर कोई है तो बंद, ब्लॉक, फिर होता ही नहीं, साइकोलॉजिकल ब्लॉक। तो ऐसे बहुत सारे मन में भी है डर, उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है, चिंता, टेंशन, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूडेड होगी। तो कारण तो ऐसे बहुत सारे हैं, और मेन एक जो कारण है वो है डाइट। डाइट की भी मेडिकल साइंस जहां पे चर्चा करता है वो लो फाइबर डाइट या फिर एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्ट्स, देवी उनके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। टेस्ट को तो हम छोड़ देते हैं, सीधा हम आते हैं अभी हमारा जो फोकस है उसके ऊपर। अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी सच्चाई को शायद ही नहीं जानते कि कब्ज जैसे रोग का एक प्रमुख कारण अनाज है। हमने अनाज को, कब्ज को हर चीज के साथ जोड़ा है, इसके साथ नहीं जोड़ा है। किसी भी मेडिकल बुक्स में ऐसा डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीरियल्स या ग्रेन्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन, वो तो कहते हैं कि होल ग्रेन्स लो वो ज्यादा और अच्छा है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि अनाज जैसे लेते हैं तो क्या क्या चाहिए अनाज के साथ, आग क्या चाहिए, नमक क्या चाहिए, तेल क्या चाहिए, शुगर, मसाले, ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है, ये ढेर सारे कॉम्बिनेशन। अनाज कभी अकेला कोई नहीं खाता है, कच्चा तो खाने का सवाल ही नहीं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा है ही, हमेशा, या तो पेट भारी है या तो कब्ज है, हल्कापन है ही नहीं। और ये हल्कापन फिर ठीक करने के लिए हम क्या करते, भारीपन ठीक करने के लिए फिर एक्सरसाइज करते, व्यायाम करते, क्रियाएं करते, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, क्या क्या कुछ करते, गर्म पानी पीते, बीड़ी सिगरेट वालों का तो ये पक्का है एकदम, अगर वो नहीं पिया तो कब्ज, पेट साफ ही नहीं होता है, उसका मुख्य कारण है न छोड़ने का। पीढ़ी पीते वो जो पीते उनको पूछना। अनाज के चोकर, अरे बहुत सारे माउंट में तो सब सब फीमेल्स, केवल बीड़ी सिगरेट नहीं, ड्रिंक्स पीने वाले भी बहुत है, बहुत सारी है। वो पैकेट में मिलती है, थैली में पॉलीथीन की पन्नी होती है ना, उसमें देसी दारू मिलती है, वो पीती है, वो हल्की बहुत सस्ती होती है वो। हाँ बहुत सस्ती सस्ती वो बिल्कुल नहीं पिया तो उसको बेचे नहीं, उसके सिवा तो काम ही नहीं कर सकते, ऐसी कितनी है। हाँ हाँ वो तो छोटे छोटे पैकेट में इतना रहता है एनर्जी ड्रिंक उनका उसके बाद काम कर सकते हैं वो, कुछ भी काम कर वो काम करते हैं। बहुत है अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही कोई पेशेंट आ गया तो उनको हमको पूछना पड़ता है, पूछने में ठीक नहीं लगता है पर पूछना पड़ता है, फिर बाद में पता चलता है ये तो क्रॉनिक एडिक्ट है, एकदम अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक। ऐसी बहुत सारी है। रिफाइंड अनाज के बारे में ऐसा दावा करता तो फिर मुझ पर लोग हंसते। रिफाइंड अनाज तो करते ही करते हैं कब्जी, पर ये जो अनाज है ओवरऑल कब्जी करता है। सभी अनाज के ऊपर के छिलके दस्तावर गुण के माने जाते हैं, अगर इसका आहार में अभाव है तो कब्ज निश्चित है, क्योंकि आंतों को उत्तेजना नहीं मिलती। गेहूं के चोकर, दालों के छिलके, बाजरा, ज्वार, मकई जैसे सभी अनाजों के छिलके कड़े रेशे हैं, इन्हें कच्चे तो खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पकाने के बावजूद भी इनका रूखा और कड़ापन विशेषकर रेशों का खुरदरापन बना ही रहता है। प्राकृतिक आहार नरम फल मेवों के मुकाबले अनाज के कड़े रेशे पाचन प्रणाली में ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करते हैं, यहाँ तक के अंकुरित अनाज के रेशे फल मेवों के मुकाबले कड़े और रूखे अधिक होते हैं। इनके जो फाइबर्स होते हैं बड़े कड़े होते हैं, ये घर्षण उत्पन्न करते आंतों में जाके। धीरे धीरे ऐसा कड़ा अनाज खाते रहने से आंतें लगातार घर्षण के कारण सख्त और कठोर होकर अपनी सुरक्षा तो कर ही लेती है, लेकिन ये घर्षण लंबे समय तक बने रहने के कारण अंत में आंतें उत्तेजना की सीमा पार कर शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है। कारण क्या है कब्ज का? क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, ये डायग्राम है, ये हमारा पेट, ये पेट, सबसे पहले भोजन ऊपर से कहाँ आता है? पेट में आता है। पेट में आने के बाद में क्या चालू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको पहला पार्ट है डियोडिनम, जेजुनम, फिर इलियम, छोटा छोटा, ये छोटी आते, फिर यहाँ से बड़ी आते चालू होती है, ट्रांसवर्स असेंडिंग, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ रेक्टम, सिग्मोइड रेक्टम और एनल रीजन, ये ऐसा ऐसा करके यहाँ तक आता है। ये है पेट और ये है भोजन, हमने जो कुछ डाला वो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अभी भोजन आगे आगे सरकना चाहिए, लोग पानी पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पर ये इतना सख्त भोजन, इतना कड़ा भोजन है कि वो आगे नहीं जाता है, वहीं फंसा रहता है अलग अलग पॉइंट पे, इम्पैक्टेड हो जाता है यहाँ पर और फिर वो निकलता ही नहीं। और जब तक ये है तब तक हमको बेचैनी रहती है, पेट भारीपन रहता है, या तो डकारे आती रहती है, यहाँ से यहाँ ही नहीं जाता, क्योंकि यहाँ का भोजन यहाँ ही गया नहीं, हमने दूसरा डाल दिया। सुबह सुबह नाश्ता किया, अभी 5 घंटे हुए ही नहीं, दूसरा डाल दिया। अरे वो पूरा उसको जाने तो दो, ठीक से यहाँ तक पहुँचने दो, फिर डालना उसको। और जितना भोजन जो कुक्ड होगा उसको डाइजेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फल खा लो तुरंत डाइजेस्ट, जूस पी लो तुरंत डाइजेस्ट, इसलिए भूख ज़्यादा लगती है। इसलिए उस दिन भी बताया था 6 बातें, अनाज छोड़ने में 6 कठिनाई है। क्या कठिनाई? पेट खालीपन, पेट बार बार भूख लगता है, पके हुए भोजन की चाह होती है, बीमारियाँ उभर कर बाहर लगती निकलती है, कमजोरी लगती है, वजन घटता है, 6 बातें बताई थी। तो उसका एक कारण ये है क्योंकि हमने इतना ठूस ठूस के ये पूरा भरा हुआ है, अगर हम अपनी आंतों को हमको दिखाया जाए कोलोनोस्कोपी में तो उसमें पूरा ऐसा भरा भरा दिखेगा, काला काला। कई लोग वो कराते हैं कोलोन इरिगेशन, कोलोन थेरेपी, नेचर क्योर सेंटर में जाके मशीन लगाते हैं, उससे पूरा सफाई करते हैं और वो सारा कांच से दिखता है निकलता हुआ, कोलोन हाइड्रोथेरेपी जिसको कहते हैं, कई लोग कराते हैं ये। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों है? ओवर ईटिंग की वजह से, गलत आहार की वजह से। इसीलिए यदि कब्ज से छूटना है तो सबसे पहला प्रिंसिपल, अनाज को कम करो। इतने सालों से 3 बार हमने अनाज खाया है, नाश्ते में भी अनाज, नाश्ते में भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, रात में भी रोटी, तीन तीन बार अनाज, उधर भी चावल इधर भी चावल उधर भी चावल, रोटी को कम करो अनाज को कम करो, तब कहीं जाके इस कब्जी से मुक्ति होगी। क्योंकि इस कब्जी का सीधा संबंध योग से है। पेट, कई सारी आध्यात्मिक संस्थाएं उन्होंने तो ऐसा कहा हुआ है कि मेडिटेशन के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लीन स्टमक। बिना क्लीन स्टमक के, बिना एनिमा लिए वो अलाव ही नहीं करते मेडिटेशन में बैठने के लिए। क्योंकि आहार ही तुम गलत ले रहे हो तो एनिमा फिर जरूरी है। अगर आहार ठीक है फिर एनिमा किसी की जरूरत नहीं है, किसी यौगिक क्रियाओं की जरूरत नहीं है। अग्निसार क्रिया और क्या क्या करते हैं लोग, शंख प्रक्षालन, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक रीति से अच्छा है, बट एक तरफ गलत आहार दिए जा रहे हो, फिर ये किए जा रहे हो, फिर करते रहो ये। अगर जब तक वो नहीं बंद होगा ये नहीं बंद होगा, ये चालू रखना पड़ेगा जीवन भर फिर तो। दोनों ही चीजें साफ चाहिए, क्लीन चाहिए। क्योंकि ये यदि भरा पड़ा है आप योग नहीं कर सकते। इसलिए अमृत वेला योग क्यों इतना अच्छा होता है, क्यों? एक कारण ये है कि उस समय साफ हुआ है। और जिनका नहीं होता है उनको नींद आती है फिर। जिनको नींद बहुत आती है उसका भी एक कारण कॉन्स्टिपेशन है। कोई सब गोल खाकर, कोई त्रिफला खाकर, कोई पालक मेथी की पत्तियां खाकर, कोई गर्म दूध पीकर, कोई चाय तंबाकू पीकर, कोई नवली उड़ियान जैसे योगी क्रिया कर, कोई गर्म पानी की पीकर, प्रत्येक बूढ़ा व्यक्ति कोई ना कोई तरीका अपनाकर आंतों को उत्तेजित कर नियमित शौच लाने का कोशिश करता है। क्या चाहिए? उत्तेजना चाहिए, तो ही आगे बढ़ता है। ये अभी शिथिल हो गए, डल हो गए, उसको धक्का मारने की ये सारी क्रिया है। और इससे नहीं होता फिर दवाइयाँ, फिर एलोपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ है, उसके बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। इससे नहीं हुआ तो ये, उससे नहीं हुआ तो वो, और हर दिन नई नई दवाइयाँ निकलती जा रही है। ऐसी पावरफुल दवाइयाँ हमारे पास कि पेशेंट लूज मोशन के साथ आता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ जाता है। ऐसी रोक देती है दवाइयाँ, या तो कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है, ऐसी दवाई देते कि लूज मोशन ही हो जाता है उसको, उससे परेशान। पहले उससे परेशान था, अब इससे परेशान। हमने कभी ऐसा पूछा ही नहीं कि हमें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों होना पड़ा, वास्तविकता क्या है। प्रकृति ने हमारे हाथों की ही नहीं शरीर के प्रत्येक अंगों को एक जिम्मेदारी सौंपी है और वो उसी विशेष कार्य हेतु रचा गया। प्रत्येक अंग हमारे अंतिम श्वास तक अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय कार्य करने को कटिबद्ध है। जो कुछ हमको दिया गया है, सब कुछ दिया हुआ है, पर फिर भी वो अगर गड़बड़ हो रही है तो कुछ ना कुछ हमसे गलती हो रही है। परंतु हम गलत आहार और गलत जीवन द्वारा जब उसके साथ गलत व्यवहार या अत्याचार करते हैं तो मजबूर होकर हमारे अंगों को अतिश्रम के कारण शिथिल होना पड़ता है। बुढ़ापे में आंतों का ही नहीं सभी अंगों का शिथिल होना ही इस बात का ठोस सबूत है कि शरीर को उपयुक्त सही प्राकृतिक निर्धारित आहार नहीं दिया गया, बल्कि गलत आहार दिया जा रहा था। दूसरा, अनाज की उत्तेजना के प्रमुख दो कारण, अनाज के कड़े रेशे द्वारा घर्षण और अधपत से अनाज की सड़न और अम्लता का घर्षण। लगातार घर्षण के कारण आंतों के मल को नरम करने वाली तेलीय ग्रंथियां नष्ट और कठोर होकर मल को नरम नहीं कर पाती। मल को सूखा रखकर, एक होता है ड्राई स्टूल्स, वो भी एक है सूखा सूखा, फिर ये सब बीमारियां होती है। तो क्या क्या करते, कटी स्नान करते कुछ लोग, एनिमा लेते हैं कुछ लोग, ये सारी क्रियाएं करते हैं, पर जब तक मूल कारण को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। सारी रेचक औषधियां, जो रेचक अर्थात दस्त कॉज करने वाली, वो क्या करती है, हंटर मार मार कर निचोड़ देती है आंतों को, अंत में ये भयंकर कब्ज का रोग बना देती है। ये जो कुछ भी है, जो कुछ हम लेते हैं, ये सब का मूल कारण है मूल गलत आहार। जेथे खाइए तेथे जाइए, ये एक नियम है। अर्थात क्या, जितनी बार खाए उतनी बार अगर शौच नहीं जाते तो निश्चित ही आप कब्ज के शिकार है। तीन बार अगर खाते हैं तो कितनी बार जाना चाहिए, तीन बार। हम कितनी बार, एक बार जाना भयंकर कब्ज नहीं तो और क्या। कई लोग कहते हैं हमारा एक बार सुबह हो गया कि बस आपको जरूरत ही नहीं, आप सीधा अगले दिन। अब ये जो कुछ डाल रहे हैं सारे दिन भर, वो सब जमा हो रहा है वहां, और वो जम के वहां सड़ रहा है, वो फर्मेंट हो रहा है, और फिर बीमारियां होती है। और फिर हम कहते हैं बीमारी मुझे कैसे हो गई, मेरा कैसे पॉजिटिव आ गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि अंदर सब कचरा भरा हुआ है। जब तक ये साफ नहीं करते, पूरा क्लेंजिंग, सफाई फर्स्ट, सफाई अभियान है ये, जब तक पेट साफ नहीं होता ना तब तक कुछ भी ठीक नहीं, मुराद हासिल ही नहीं है तब तक। प्राकृतिक आहार, जितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार उन्हें शौच जाना पड़ता है। गाय बकरी व अन्य प्राणियों में भी इस सत्य को क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो बुढ़ापे में कब्ज का शिकार है? मनुष्य छोड़कर हमारे सारे अंग कमजोर और शिथिल हो गए गलत आहार से। इसके लिए उसको जितना हो सके प्राकृतिक जितना दिया जाएगा, धीरे धीरे सबसे पहले सफाई होती जाएगी, और जैसे ही पाचन शक्ति इससे मुक्त होगी, ऊर्जा का अनुभव होगा, बीमारियों से मुक्ति होगी, कब्ज होगी नहीं। प्राकृतिक आहारी अर्थात योगी अर्थात उसको पता ही ना चले कि मुझे पेट भी है। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है पता है? जैसे हमें यहां अगर पेन है तो सारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। अगर पेन है ही नहीं, हाथों में पेन है, तो हाथों का कोई विचार है? विस्मृति, शरीर की विस्मृति, यह डेफिनेशन है हेल्थ की। जैसे ही यहां घुटनों में दर्द चालू हुआ, सारा ध्यान घुटने की तरफ, अर्थात बीमारी। यह है रोग की परिभाषा। एक वो अवस्था कि जिसमें हम बैठे हैं पर कहीं कोई भी दर्द नहीं, वो परिभाषा है स्वास्थ्य की, रियल परिभाषा। तो लास्ट भाग, मानव आहार को अच्छी तरह गौर करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकृति ने निर्धारित सभी आहारों को कोमल बनाया है, जिसे आग में डालकर कोमल बनाने की मूर्खता नहीं करनी पड़ती है। माँ का दूध कितना कोमल, चिकना, कितना रसदार फल, गुद्देदार फल, ताजी अवस्था में आते तो आते, जीभ भर भी इसका घर्षण अत्यंत कोमल रूप से होता है, जीभ में भी घर्षण। अब ये दो तीन बातें लास्ट है। 3-4 महीने फल मेवे पर रहने के बाद अनाज खाए, देखो फिर क्या होता है। पेट में गड़बड़ और दस्त इसको सिद्ध करता है कि अनाज के रेशे कठोर होते हैं। 3 मास तक नेचुरल डाइट लेने के बाद फिर एक दिन अचानक रोटी सब्जी खा के देखो, उल्टी हो जाती है। शरीर उसको स्वीकार ही नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है शरीर। शरीर कहता है ये क्या डाल दिया तुमने, अब तक सब ठीक चल रहा था। स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट करता है शरीर उसको, बॉडी रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए वो नेचुरल हो जाता है उसके लिए। अगर जो भी हम शरीर में डाल दें 3 मास और अचानक एक नया आहार डाल दें तो बॉडी रिजेक्ट कर देती है। कठोर अनाज के रेशों को नरम करने के लिए आग का सहारा लेना पड़ता है। फल मेवों को आग में डालने की, फल को कोई गर्म करता है क्या ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए? आजकल तो वो भी कर रहे हैं, एप्पल को भी गर्म करते हैं, केले को भी गर्म करते हैं, उसकी भी सब्जी बनाते हैं। वो पहले इतना मीठा, इतना रसीला, इतना सब कुछ अच्छा है उसमें, उसको भी ये सब कर रहे हैं। अनाज खाने को, खाने वाले को बुढ़ापे में कब्ज होना जितना निश्चित है, निश्चित है। जिसने जीवन भर अनाज खाया है, अभी बुढ़ापे भर एक ही समस्या है, कब्जी। दूसरी कोई समस्या ही नहीं। बूढ़े लोगों से बात करो तो एक ही चर्चा है, टॉपिक एक ही है, कॉन्स्टिपेशन। आज तुम्हारा पेट साफ हुआ क्या? मेरा नहीं हुआ, यही चर्चा है, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर लूज मोशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, यही चलता रहता है। लूज मोशन हुआ तो उसको ठीक करो, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो उसको ठीक करो। सारा मन, दिमाग, बुद्धि, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है पेट के। फल मेले मेवे वालों को भी ये निश्चित है कि उनको कभी कब्ज नहीं होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है फ्रूटेरियन डाइट की कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। खीरा, ये सारे जो है रेचक रस, ये बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह ग्रीन जूस ले लो, पेट साफ पूरा क्लीन। उसमें आंवला डाल दो, लौकी, खीरा, आंवला, या जो भी जिस दिन अवेलेबल है, साफ। अनाज खाने वालों का मल कड़े रेशों के कारण भारी होता है, फल मेले मेवे वालों का मल इतना हल्का होता है। कई लोगों को बहुत बदबू आती है और सोचती है बदबू क्यों आती है, इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आती है हमारे स्टूल से, क्योंकि क्या क्या खा रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अभी अभी कितने सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, चावल भी खाया, अनाज भी खाया, रोटी भी खाई, सब्जी भी खाई, फिर उसके बाद में फ्रूट क्रीम भी खाया, उसके बाद में आइसक्रीम भी खाया, गुलाब जामुन भी खाया, कचौरी भी खाई, इतनी इमली की चटनी भी खा ली, उसमें सब कुछ ही डाल दिया। कॉम्बिनेशन सो डेंजरस। रात में आज मोले की गोली और रात में वो क्या सोप, सोप, गुड़, मुखवास। फूड इज अ इंफॉर्मेशन, फूड एक सूचना है, वो हमारा शरीर रीड करता है और इतना कंफ्यूज हो जाता है वो। इसमें कम से कम जो व्यक्ति सब कुछ तो नहीं, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद एटलीस्ट इतनी जजमेंट आ जाती है, अगर 10 चीजें रखी है तो खाना तो है, तो व्यक्ति एक चीज उठा लेगा, चावल ले लेगा, भरपूर चावल खा लेगा, या रोटी सब्जी खा लेगा बस हो गया इतना एक जजमेंट अपने आप आ जाएगा। कम से कम सीधा हम नहीं कह रहे कि सीधा 100% फ्रूटेरियन पे चले जाओ, 100% फलाहारी हो जाओ, 100% रॉ पर पहुंच जाओ, ये नहीं, पर ये जजमेंट तो जरूर आ जाएगा अगर 10 चीजें रखी है, अभी वो भी किया, फिर गन्ने का जूस भी उधर बन रहा है, जल्दी जल्दी खाओ उसके बाद वो खाना है। और ये तो हमने पहली बार यही सुना मधुबन में आके, आज नाश्ता नहीं किया क्यों, आज दोपहर में वो बनने वाली है ना इसीलिए तो आज नाश्ता नहीं करने ताकि वो ज्यादा खा सके। ये तो पहली बार यहाँ की पता चला, ऐसा भी होता है कि आज वो नहीं खाना, आज रात में ब्रह्मा भोजन है वो हम चाहते हैं कि जो भी बना रहे उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल के अधिक से अधिक उसको टेस्टी बनाया जाए, इतना कुछ डाले मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो YouTube पे वीडियो देखा 3-4 और हर एक ने जो जो डाला वो हर चीज डालो, उसमें बीन्स भी डालो, उसमें टमाटर भी डालो, उसमें अरे वो रह गया, फिर अगर वो छूट गया ना तो इतना दुख होता है कि वो छूट गया, हम कहते नहीं बहुत अच्छा बनाया तुमने, अरे नहीं कहाँ बनाया वो एक तो रह गया, हाँ कोई नहीं अगली बार डाल देना उसको भी, बनाने वाले को भी लगता है मैं सब डालूं इसमें, जितने मसाले हो सके जितने अच्छा हो सके उसको टेस्टी बनाऊं, क्योंकि जब बनाने वाले की तारीफ होती है कि किसने बनाया ये पुलाव किसने बनाया, तो ऐसी छाती एकदम चौड़ी हो जाती है, हमने बनाई तो फिर एक नाम हो जाता है ना उसमें बनाने का, हमारा भी कुछ फिर अरे पर हमने सीखा ना मेहनत किसने की, तो हम इतनी सारी ये प्रोसेस के जाने के बाद एटलीस्ट इतना तो जजमेंट आ ही जाएगा कि 10 चीजें बननी है तो मुझे क्या खाना है। हम बहुत छोटे जब थे एक टीवी पर कार्टून आया था, कार्टून ऐसे सीरियल आते रहते ना, उसमें दो लड़के वो ऐसे कार्टून जा रहे मार्केट में जाते, तो पहला लड़का होता है वो कचौरी खाता है, फिर गुलाब जामुन खाता है, फिर कुछ खाता है, फिर कुछ खाता है, कुछ खाता है, बहुत सारी चीज़ें खाता है, और जो दूसरा लड़का होता है ना वो दो बॉटल अपने पास रखता है कांच की, और वो जो उसका दोस्त जो भी खाता है वो एक एक टुकड़ा उसमें डालते जाता है, और वो खुद जो खाता है वो उसमें डालता है, तो अपने इसमें एक वो जलेबी का एक टुकड़ा डालता है, उसने उतने ही खाया बस, फिर वो दोनों वापस आते हैं शाम को, फिर वो जो पहला मित्र है उसको इतनी दस्त और क्या क्या हो रहा है, वो कहता है ऐसे क्यों हो गया पता नहीं मुझे, अब डॉक्टर के पास जाना है, वो कहते हैं देखो ये दो बॉटल, ये तुम्हारा पेट है ये मेरा पेट है इसमें केवल एक जलेबी है, तुम्हारे पेट में सब कुछ है, ये जजमेंट तो जरूर आ जाएगा कि 10 चीजें बनी है तो मुझे उसमें से एक ही लेनी है बस, एक समय पे मैं अपने पेट को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ये इतना जजमेंट जरूर आ जाएगा। अनाज के रेशे आंतों से अधिक स्त्राव मांगते हैं, सिक्रीशंस ज्यादा, जो भी हम खाते हैं योगी अर्थात सेविंग गैस्ट्रिक जूसेस, ये जो भी खा लाए डाला कि यहां से सिक्रीशंस निकलना चालू हो जाते, फिर उसको पचाते हैं, यहां से स्त्राव चालू हो जाता है, योगी अर्थात जो अपनी वाणी को बचाता है, जो अपने वीर्य को बचाता है, ब्रह्मचर्य वाणी को बचाता है, मौन योगी अर्थात जो गैस्ट्रिक जूसेस को बचाता है अर्थात फास्टिंग, ये योगी की तीन परिभाषा है, वन हु सेव्स गैस्ट्रिक जूसेस, ये योगी की परिभाषा है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूसेस अर्थात जितनी बार खाओगे जूसेस निकलते हैं और वो उसको पचाने में मदद करते हैं ना, क्योंकि बिना जूसेस के पाचन होता नहीं है, तो ये एक साबुत अनाज के रेशे को मुंह में खूब चबा चबा कर तोड़ना पड़ता है, फल मेवों को इससे बहुत ही कम चबाना पड़ता है, अच्छा चबाना बहुत जरूरी है, पर कौन चबाता है, हमको तो टाइम ही नहीं है चबाने का, कम से कम 10 बार तो चबा है, पर 10 बार भी कहाँ चबाते हैं, और चावल को तो बिल्कुल ही नहीं चबाते, सीधा अंदर सीधा अंदर सीधा अंदर, चबाना कम हो गया है हमारा, लिक्विड्स में फायदा ये है उसको चबाना नहीं पड़ता है, इसलिए चबाने की प्रोसेस के लिए कहा जाता है जो भी सॉलिड खाओ उसे तब तक चबाओ जब तक वो लिक्विड नहीं हो जाता, फिर उसको अंदर जाओ डालो, भोजन का जूस वो खा सको पी सको तो पी लो, जो भी रोटी खा रहे तो उसको तब तक चबाओ जब तक वो लिक्विड नहीं बन जाता है फिर वो अंदर जाए, ताकि पेट को काम कम हो, हम पेट का काम बढ़ा रहे क्योंकि अंततः सब कुछ जाके लिक्विड बनना है, पहले सॉलिड को अंदर जाके लिक्विड बनना है, ये शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत ही कम कराए उससे, पहले से ही लिक्विड कर दो उसको, इसके लिए रसाहार लिक्विडेरियन डाइट का बहुत महत्व है, शरीर पर बोझ ही नहीं है वो, सॉलिड का बोझ क्या है कि उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके लिक्विड बनाओ, लिक्विड को फिर गैस, ये प्रोसेस है, गैस अर्थात एयर, उसमें सबसे कम अनाज के रेशों को मशीन द्वारा आटा बनाया जाता है, फल मेवों को आटा नहीं बनाया जाता है। फिर अनाज को तोड़ने के लिए भारी मशीन, पत्थरों की चक्की का सहारा लेना पड़ता है, फल मेवों के लिए नहीं लेनी पड़ती। कब्ज वालों को अनाज का कड़ा रेशा खाकर सौ जरूर जाना पड़ता है। ऐसे लोग जैसे ही फल मेवे जैसे नरम आहार पर आते हैं तो कड़े रेशों की उत्तेजना की आदि हो चुकी आते, नरम कोमल रेशों में उत्तेजित नहीं होती है, जिससे सामान्यतः यह भ्रम हो जाता है कि फल जो है ना कब्ज हो जाता है। जब भी कोई आहार चेंज करता है दोष किस पर डालता है? आहार चेंज पर। ये पहले ही मेरा ठीक चल रहा था, ये जब से ये फल खाना चालू किया ना गड़बड़ हो गई सारी, उस पर ही चले जाओ, इसलिए ऐसा होता है। जबकि वास्तव में अनाज की उत्तेजना से मुक्त होकर फल मेवों द्वारा शौच सामान्य होने में एक सप्ताह के करीब लग जाता है, इसलिए थोड़ा धीरज चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, तो आज से हमारी 7 दिन का चैलेंज, जो कल भी बताया था 7 डेज रॉ चैलेंज, जितना हो सके जो कर सके वो 100% अपक्व, 1 हफ्ता, आज 7 तारीख से अगले 7 तारीख तक, जो नहीं कर सकते अगले 14 तारीख तक, 7 तक भी कर सकते जिनको करना है, एक एक दिन। आज सफलता अगर मिल गई ना तो कल सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आज तोड़ दिया संकल्प को तो कल संकल्प फिर टूटता है, उसको पोषण मिल जाता है संकल्प तोड़ने का। पर आज अगर संकल्प कर लिया तो अपने आप पावर आ जाती है आगे बढ़ने की। तो 7 डेज रॉ चैलेंज में जो कर सके वो टोटल 100% रॉ, क्या क्या लेंगे? फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल्स, सैलड्स, अंकुरित, भूखा नहीं रहना है, भरपेट जितना हो सके, बॉइल्ड आलू ले सकते तो वो लो, रागी, सत्तू, पोहा जैसे कल बताया था, ये सारी चीज़ें जो है ना, वैसे तो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला पर एकदम कुक से ये बेटर है थोड़ा। अंकुरित मूंग उसकी भी अच्छी क्वांटिटी, उसको सजाओ बहुत सारी अलग अलग तरीके से, सलाद बनाओ तो वो थोड़ा टेस्टी हो जाए, तो वही तो वो फिर वो केले वाली बात है, छिलके निकाल के हाथ में रख सकते हैं, फिर मुंह में रख सकते हैं, खाएंगे नहीं वही तो माया है, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा गरम कर ले, अच्छा चलो गरम कर ले, अब गरम तो कर लिया पर उसको किसके साथ खाए, थोड़ी एक रोटी खा ले फिर रोटी आ गई, फिर उसमें वैसा तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मसाला डाल दे, नहीं इतना नहीं करेंगे पर ये हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हथौड़ा लग ही जाता है, एक बार गैस चालू कर दिया कि बस फिर गए, एक बार किचन में एंट्री कर दी उसको प्रोसेस करने के लिए गॉन, क्योंकि वो सब फिर उसको सब चाहिए, उसमें सब आ जाएगा, संकल्प गर्म करो। तो 100% रॉ, जो नहीं कर सकते रात में एक बार कुक्ड, जो नहीं कर सकते ठीक है, और जो ऑलरेडी रॉ पर है लंबे समय से, दे कैन गो स्ट्रेट फॉर लिक्विड्स, ओनली लिक्विड डाइट, ये सेमी सॉलिड, इसमें स्मूदी वगैरह कर सकते हैं ये सब, ठीक है। तो ये 1 हफ्ता हम प्रयोग करके देखेंगे ना, रात के समय आपको अगर चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके रात का भोजन पूर्ण कर देना है, उसको एकदम लेट नहीं करना है, 6 o'clock, 6:30 बस, रात में जितना हो सके हल्का ही रखो, फल दोपहर को अच्छा ले लो, कई लोग रात का अच्छा भारी ले लेते हैं दोपहर का हल्का रखते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप को गर्म करना पड़ता है रॉ, उसमें एक है टोमेटो सूप, पर गर्म नहीं करना उसको, टोमेटो जूस, टमाटर जूस, टमाटर का जूस निकाल के और उसमें ये डाल दो, थोड़ा मसाला डाल सकते हैं, वो टेस्टी हो जाता है, पता नहीं चलता है वो सूप और ये सूप। दूसरा है बादाम का मिल्क, कोकोनट का मिल्क, कोकोनट का मिल्क, कोकोनट मिल्क, बादाम का मिल्क, सेंगदाना मिल्क, ये ले सकते हैं, वो तो बहुत हेवी रहता है, और उसमें बादाम डाल दो या शहद डाल दो थोड़ा, वो स्वीट हो जाता है इनफ। एक चीज़ है कि ये सारी प्रोसेस में धीरे धीरे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को ये नहीं समझ नहीं आता है, उसको 3 ग्लास गन्ने के जूस पी लिए तो भी भूखा रहेगा, और आधा ग्लास भी अगर कॉन्शियस ड्रिंकिंग करोगे तो भूख नहीं लगेगी। चम्मच से जितना हो सके जूस कैसे पीना है, चम्मच से पिया और फिर चम्मच को वापस ग्लास में रख दो, फिर उठाया, फिर पिया, फिर रख दो, ये प्रोसेस है, तो माइंड को सिग्नल मिलता है कि हो गया, पेट भर गया, माइंड को छल करना है उसके साथ, हाँ वो उसको कहते हैं क्या हो रहा है, और ये चबाना जितना ज्यादा करेंगे ना उतना यहां सिग्नल मिल जाता है उसको कि हो गया बहुत चबा लिया, पेट भर चुका है, और चबाया नहीं तो उसको सिग्नल नहीं मिलता है, वो कहता है और खाओ और खाओ और खाओ, इतना चावल इतना पुलाव खाया उसके बाद भी पेट नहीं भरा, और लाओ और वही पुलाव अगर छोटा चम्मच, वो बेबी का चम्मच होता है ना इतना वाला, वो चम्मच से खाओ और चबाते बैठो, आधा प्लेट भी नहीं पूरी होगी तो लगेगा बहुत हो गया अभी, बंद करो इसको। वो सबसे, और एक ये मेथड है, कई लोग जो ब्रदरियन जर्नी पर है वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन जिनको सब धीरे धीरे बहुत आगे योगी अवस्थाओं में, ये दिस इज रियल टेक्निक, जिसमें फ्रूट लेते हैं चबाते हैं और फेंक देते हैं, खाते नहीं, बस चबा लेने का वो, ये इसको तो उल्लू बनाना है ब्रेन को, उसको लगता है हाँ हो गया चबाने के, तो खा के मिल गया, पर खाते नहीं है, खाली चबाते। एक होता है वर्चुअल ईटिंग, ये एक नई टेक्निक है, वर्चुअल ईटिंग में मशीन से आपके खाली दांत हिलाए जाते, दिया कुछ नहीं जाता है, सामने भोजन रखा है पर खाली अपने आप, खाना नहीं। ये पूरी टेक्निक है, इसको आप देख सकते हैं, वर्चुअल ईटिंग कहते हैं इसको, जैसे अभी ऑनलाइन सब हो गया ना जूम वगैरह, वैसे वर्चुअल ईटिंग, अगला उल्लू बना रहे इसको, ये कर रहा है हाँ, उसको बाद में लगता है खाया तो पर क्योंकि इसको तो खाली चबाना का भाषा समझती है ब्रेन को, ब्रेन को अगर चबा दिया ना 15 मिनट बिना कुछ खाए तो उसको लगेगा हो गया काम पूरा, अभी नहीं खा सकता है कुछ। ये भी करके देखो, चबाओ और जैसे संतरा ले लिया, मौसम भी ले लिया, चबाओ और फेंक दो, बस वो भी है, खुशबू ले लो। जैसे एक वीडियो आया था बर्गर, ठीक है, बर्गर दिखाने का, स्मेल करने का, नीचे से एप्पल खाने का, ऊपर से बर्गर की स्मेल, नीचे से एप्पल, ऊपर से स्मेल देने का उसको पुलाव, ये ऊपर से खिलाओ पनीर और नीचे से नारियल पानी। बहुत अच्छा वीडियो है एक बहन का, ऊपर से ऐसे ऐसे करिए वाह 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 और नीचे से ये नीचे करेले का जूस, ऊपर से आमरस, छल करना है ब्रह्म मन के साथ, ये छल हो जाएगा। ओके, ओम शांति। आहार पुराण समाप्त।